الحمدللہ پچھلے سالہ سال سے یہ ہماری مجلس جاری ہے اور اس میں بہت سی بنیادی باتیں بار بار تکرار کے ساتھ بھی آتی رہی ہیں اور تکرار مفید بھی ہوتا ہے۔ تو اب میرا خیال یہ ہے کہ اصل میں اصلاح کے ایک دو طریقے ہیں۔ ایک یہ کہ جو بنیادی احکام ہیں شریعت کے ان پر کس طرح عمل کیا جائے وغیرہ، اور ایک وہ راستہ ہے جس کو تصوف کہا جاتا ہے، طریقت کہا جاتا ہے۔ تو اگلی انشاءاللہ مجلسوں میں میں کوشش کروں گا کہ حضرت حکیم الامت مولانا اشرف علی صاحب تھانوی قدس اللہ تعالیٰ سرہ نے جو تصوف اور طریقت کی جس طرح اس دور میں وضاحت فرمائی ہے اس کی مثال کہیں اور نہیں ملتی۔ تو میں سوچتا ہوں کہ ویسے بھی میں اپنے دوستوں کو کہتا ہوں کہ ایک کتاب ہے شریعت و طریقت، جس میں حضرت مولانا دین محمد صاحب اشرفی نے حضرت کے وہ ملفوظات اور مقالات میں سے وہ حصے جمع کیے ہیں جن کا تعلق تصوف اور اصلاح نفس سے ہے۔ تو اب ایک طرح سے سمجھو کہ باقاعدہ سبق کے طور پر وہ کتاب انشاءاللہ، میرا ارادہ ہے کہ انشاءاللہ شروع کروں اور اس کی تھوڑی تشریح آپ حضرات کی خدمت میں پیش کیا کروں، جیسی کچھ اپنے بزرگوں سے سنی ہے یا دیکھی ہے۔ لیکن ایک مضمون میں نے پچھلے دو تین مجلسوں میں شروع کیا تھا توبہ سے متعلق، تو آج خیال ہوتا ہے کہ اس توبہ کے مضمون کو ذرا مزید تھوڑی سی وضاحت کے ساتھ عرض کر دوں، پھر انشاءاللہ اللہ نے زندگی عطا فرمائی تو پھر انشاءاللہ شریعت و طریقت کا آغاز کریں گے انشاءاللہ۔ توبہ کے بارے میں پچھلے بیانات میں میں نے یہ عرض کیا تھا کہ اللہ تبارک و تعالی نے یہ توبہ کا دروازہ ہمارے لیے کھولا ہے اور مستقل کھلا ہوا ہے، کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے۔ جب سے بندہ شرعی احکام کا مکلف ہوتا ہے یعنی بالغ ہونے کے بعد، جب کبھی اس سے کوئی غلطی سرزد ہو جائے تو اللہ تبارک و تعالی نے آسان راستہ رکھا ہے کہ وہ اللہ تعالی کے حضور توبہ کر لے۔ یہ راستہ اللہ تعالی نے پہلے دن سے پیدا کیا تھا، حضرت آدم علیہ السلام کو دنیا میں بھیجنے سے پہلے۔ قرآن کریم نے فرمایا کہ حضرت آدم کو پیدا کرنے سے پہلے اللہ تبارک و تعالی نے فرشتوں سے کہا تھا کہ انی جاعل فی الارض خلیفہ، میں زمین میں ایک خلیفہ بنانے والا ہوں۔ تو ارادہ پہلے ہی سے کیا تھا کہ آدم علیہ السلام کو زمین پر بھیج کر اپنا خلیفہ بنانا ہے کہ وہ اللہ تعالیٰ کے نائب بن کر وہ اللہ تعالیٰ کے احکامات دنیا تک پہنچائیں اور پھیلائیں۔ تو اس کا تقاضا یہ تھا کہ جب پیدا کر دیا تو اللہ تعالیٰ سیدھے دنیا میں بھیج دیتے، پیدا ہی اس لیے کیا تھا کہ دنیا میں بھیجنا ہے، لیکن پہلے جنت میں رکھا اور جنت میں رکھنے کے ساتھ ایک حکم دے دیا کہ بھئی اس درخت کے پاس نہ جانا، تو اور کوئی وہاں حکم نہیں دیا، نماز پڑھو، روزہ رکھو، اس قسم کا کوئی حکم نہیں دیا، عبادت کرو میری، بس ایک حکم دیا کہ اس کے پاس مت جانا۔ کیا ہو رہا تھا؟ یہ تربیت اس بات کی ہو رہی تھی کہ اب تک جو ہم نے مخلوق پیدا کیا ملائکہ کی، اس میں تو گناہ کرنے کی صلاحیت ہی نہیں، उसको हमने पैदा ही इस तरह किया है कि वो हर गुनाह से पाक है, मासूम है, उनसे तो गलती होती नहीं। मैं खलीफा उस शख्स को बनाने वाला हूं जिसके अंदर गुनाह का भी मादा है, जिसके अंदर गुनाह का भी मादा है, तो मैं वो खलीफा उसको बनाऊंगा अगर मैं खलीफा ऐसे शख्स को बना दूं जो मासूम है अनिल खता, तो फिर वो सारे इंसानों को अगर दावत भी देगा तो लोग कहेंगे भाई तुम्हें तो ना भूख लगती है ना प्यास लगती है ना तुम्हारे दिल में कोई और ख्वाहिश पैदा होती है, तो तुम हमें क्या हुक्म दे रहे हो। मैं ऐसा शख्स भेजने वाला हूं कि जिसके दिल में गुनाह की ख्वाहिश भी पैदा होती है, जिसमें बुराई का जज्बा भी पैदा होता है, और फिर वो अल्लाह ताला के हुक्म को मानकर उससे परहेज करता है, और अगर उस परहेज करने में उससे कभी वो फिसल जाए तो उसका नुस्खा भी मुझे बताना है उसको कि अगर फिसल गए तो क्या करना है तुम्हें। तो ये तरबियत, ना नमाज ना रोजा ना इबादत ना सजदा ना तस्बीह ना जिक्र, एक ही हुक्म है कि इसके पास मत जाना इस दरख्त के। फिर अब उसी को शैतान भी तो अल्लाह मियां का पैदा किया है, किसी और का है, अल्लाह ताला ने पैदा किया ना, उसको भेज दिया कि जरा जाके इसको भड़का फुसलाओ, तो उसने आके फुसलाना शुरू कर दिया। आदम अलैहिस्सलाम को ऐसी तावील सुझाई कि वो भी चक्कर में आ गए। तावील ये सुझाई कि ये दरख्त जो से आप मना किया था ये तो एक खास वक्त के लिए था, आपका जो मैदा है उसके लिए उसके काबिल नहीं था, और अब तो आप कह रहे थे बेतहाशा हो गया, तो अब वो ममानात बाकी नहीं रही, और इसलिए रोका था कि भाई इस दरख्त को खाने वाला जो है वो उसको एक हमेशा की जिंदगी मिल जाती है। तो शुरू में आपका मैदा इसका मुतहम्मिल नहीं था कि इसको खाएं, अब तो आपको इतना अरसा गुजर गया तो उसके अब खाने में कोई मसला नहीं, ये ताबील सुझा दी आदम अलैहिस्सलाम। चुनाचे वो उनके फरेब में आ गए, इस ताबील के फरेब में आ गए, तो उन्होंने खा लिया। अब जो खा लिया तो क्या होता है कि कुरान फरमाता है कि जब उन्होंने खा लिया तो फबदत लहुमा सौआतुहुमा, कि उनकी जो कहना चाहिए शर्म की चीजें थी वो खुल गई, और उन्होंने अपने आप को, पहले तो उनके ऊपर जन्नत का लिबास था, जन्नत का लिबास था वो पहना हुआ था, क्यों ही ये गलती सरजद हुई वो जन्नत का लिबास उतरने लगा और सतर जाहिर होने लगा। और कुरान कहता है कि जब उनको देखा कि ये तो सतर जाहिर हो रहा है तो उन्होंने जन्नत के पत्ते लेकर अपने आप को छुपाना शुरू किया, और उस वक्त उनको तनब्बो हुआ कि कोई बहुत बड़ी गलती मुझसे हो गई है। अब परेशान हुए कि गलती का तदारुक कैसे हो, कोई से बात समझ में आ नहीं रही थी कि गलती का तदारुक कैसे होगा। तो फतलका आदम में रब ही कलिमातिन, कुरान कहता है आदम अलैहिस्सलाम ने अपने परवरदिगार से ही कलिमात सीखे। क्या सीखे कि रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन, ये अल्फाज खुद परवरदिगार ने सिखाए कि यूं कहो तो बात तो तुम्हारी इस गलती की तलाफी हो जाएगी। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुनन्ना मिनल ख़ासिरीन। अब जरा देखो कि पैदा किया था जमीन पर भेजने के लिए, रखा जन्नत में, और कोई हुक्म नहीं दिया सिवाय एक न करने का, कुछ करने का हुक्म नहीं दिया बल्कि न करने का, और उसके लिए शैतान को पहले तखलीक तो बारी ताला ही किया ना, बारी ताला की मशीयत के बगैर तो शैतान नहीं आ सकता था ना, तो वो शैतान आया और उसे तावील सुझाई। तावील सुझाए कर ये एक बात सबक दे दिया हजरत आदम अलैहिस्सलाम को कि जब तुम दुनिया में जाओगे तो ये शैतान इस तरह की तावीलात तुम्हें सुझाता रहेगा। क्या सुझाता रहेगा? कि ये हुक्म तो पहले जमाने के साथ खास था, अब इस जदीद दौर में ये हुक्म नहीं है। समझे आप? वो ये सुखाएगा सिखाएगा कि सूद जो है वो हराम था उस वक्त रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में, आज का जो जदीद तरीन सूद है वो और चीज है। तो इसलिए जिस तरह उनको ये कहा था ना कि तुम्हारा मैदा अभी मुतहम्मिल नहीं है, बाद में अब तुम पक्के हो गए हो लिहाजा अब खाने में कोई हर्ज नहीं, तो ऐसी तावीलात वो फिर बाद में भी सिखाएगा। और इस किस्म के मसाइल सामने लाएगा, वो क्या है कि ये बात आ गई तो अर्ज कर देता हूं कि शरीयत का जो हुक्म होता है वो किसी इल्लत पर मौकूफ होता है, जहां वो इल्लत पाई जाएगी हुक्म आ जाएगा। और एक चीज होती है हिकमत, यानी हर हुक्म के पीछे एक हिकमत होती है, दारोमदार हिकमत पर नहीं होता हुक्म का बल्कि इल्लत पर होता है। उसकी एक आसान मिसाल मैं दिया करता हूं कि जब आप गाड़ी चलाते हैं तो सड़कों पर सुर्ख बत्तियां लगी हुई हैं, ठीक है, तो वो सुर्ख बत्ती जो है जब जल जाए तो क्या हुक्म है? रुक जाओ, ठीक है। ये सुर्ख बत्ती इल्लत है इस हुक्म की, जब सुर्ख बत्ती जल गई हुक्म आ गया रुक जाओ। हिकमत क्या है इसकी, मसलात क्या है इसके पीछे? मसलात यह है कि भाई ताकि इंतजाम कायम रहे और कोई आपस में तसादुम ना हो, कोई एक्सीडेंट ना हो जाए, ये मकसद है ना। लेकिन क्या हर शख्स ये फैसला करेगा कि इस वक्त तसादुम का इम्कान है या नहीं है? अगर हर शख्स के हक पर छोड़ दिया जाए कि तुम ये देख लिया करो कि अगर इस तसादुम होने का अंदेशा हो तब तो रुक जाया करो, और जब तसादुम का अंदेशा ना रहे तो गुजर जाया करो, तो ये इस तरह वो निजाम ही खराब हो जाएगा। कोई आदमी सोचे कि यार सामने बत्ती जल रही है लेकिन सड़क आगे खाली पड़ी है, एक दो गाड़ियां आ रही है, मैं अगर गुजर जाऊंगा तो कोई मसला नहीं, तो क्या होगा अगर वो गुजर जाए? चालान होगा नहीं होगा? होगा। क्यों होगा? इसलिए कि तेरा काम हिकमत और मसलहत देखना नहीं है, तेरा काम इल्लत को देखना है। इल्लत क्या है? सुर्ख बत्ती। ऐसे ही अहकाम शरिया में हर चीज की एक इल्लत है और एक हिकमत है। तो इल्लत पर नजर, बंदे का काम यह है कि जहां इल्लत आ जाए फौरन रुक जाए। तो जब हजरत आदम अलैहिस्सलाम को अल्लाह ने फरमाया था इस दरख्त का कोई फल न खाना, तो इल्लत क्या थी? वो दरख्त, समझे ना। हिकमत क्या थी वो अल्लाह जाने, समझे आप। इबलीस ने आकर इल्लत और हिकमत को खलतमल कर दिया। उसने आकर ये कहा कि जी ये तो इसलिए बनाया था कि ताकि आपका मैदा मुतहम्मिल नहीं है, आप खाएंगे तो आपको नुकसान होगा। अब तो आप जवान हो गए हैं और मुद्दा साल गुजर गए हैं, अब अगर आप खाएंगे तो कोई नुकसान की बात नहीं है। उसने जहन इल्लत से कहां फेर दिया? हिकमत की तरफ। तो अल्लाह ने यह सबक देना था कि तुम्हें दुनिया में जाने के बाद भी शैतान इस तरह बहकाया करेगा कि वो इल्लत के बजाय तुम्हें हिकमत के फेर में फेर लगा देगा, तो उसके नतीजे में तुम अल्लाह ताला के सही रास्ते से हट जाओगे। और अगर हट गए तुम्हें क्या करना है वो हम तुम्हें बता देते हैं। रब्बना ज़लमना अनफुसना व इल्लम तग़फिर लना व तरहमना लनकुन्ना मिनल ख़ासिरीन। जब ये सारे तजरबे से गुजर गए आदम अलैहिस्सलाम और गलती भी हो गई, गलती का तदारुक भी उनके उनको समझा दिया गया, अब कहते हैं अब जाओ जमीन पर जाओ और वहां जाकर हमारी खिलाफत का फरीजा अंजाम दो। तो पहले दिन से बंदे को रूए जमीन पर भेजने से पहले अल्लाह ताला ने तौबा का तरीका सिखा दिया कि जब कभी शैतान तुम्हें आकर बहकाएगा, डसेगा, तो तुम क्या करोगे? फौरन हमारी तरफ रुजू करके इस्तगफार करोगे, तौबा करोगे। और ये तो आप बार बार सुन ही चुके हैं, जानते भी हैं कि तौबा के तीन हिस्से होते हैं। एक, उस गुनाह को फौरन छोड़ देना। दूसरे, नदामत। और तीसरे, आइंदा के लिए अजम करना, इरादा पक्का करना। अगर दिल में शुबा हो रहा हो कि पता नहीं मैं इस अजम पे कायम रह सकूंगा या नहीं रह सकूंगा, वो तौबा के मुनाफी नहीं है। अपनी तरफ से अजम कर लो। और ये जो अंदेशा लग रहा है कि कहीं बहक ना जाऊं, उसके लिए अल्लाह ताला ही से मांग लो कि अल्लाह मैंने ये इरादा तो कर लिया, अपनी तरफ से पक्का इरादा है, मगर मैं क्या, मेरा इरादा क्या? आपकी तौफीक के बगैर मैं इस अजम पर कायम नहीं रह सकूंगा, लिहाजा दो काम कर ले बंदा, अपनी तरफ से तौबा कर ले और फिर क्या करे, फिर तौबा करे, नहीं फिर दुआ करे अल्लाह ताला से कि अल्लाह मैंने कर तो ली, लेकिन अब हमें, मुझे इस अजम पर साबित कदम रहना आपकी तौफीक के बगैर मुमकिन नहीं, लिहाजा अल्लाह मुझे इस पर इस्तकामत अता फरमा। देखो सूरह फातिहा में क्या फरमाया अल्लाह ताला ने, यह सिखाया कि यूं कहो, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन। बड़ा दावा है, जबरदस्त, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, आप ही की इबादत करते हैं, आप ही से मदद चाहते हैं। बड़ा दावा कर लिया बंदे ने, और किसी की इबादत नहीं करूंगा और किसी और से मदद नहीं मांगूंगा आपके सिवा। तो ये दावा तो करवा दिया अल्लाह ताला ने नमाज में, ये कह लो, इकरार कर लो इस बात का कि आपके सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा, आपसे के सिवा किसी से मदद नहीं मांगूंगा, यानी उसको कारसाज समझकर, उसको मुश्किल कुशा समझकर मदद नहीं मांगूंगा। उसके बाद फौरन क्या फरमाया, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, यानी पहले इकरार ले लिया, इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्ताईन, फौरन फरमाया कि साथ ही ये भी कह लो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम। तो इकरार ले लिया कि आपके सिवा किसी की इबादत नहीं करूंगा, आपके सिवा किसी की मदद ना, किसी से मदद नहीं चाहूंगा। इकरार लेने पर इक्तफा ना करना, कभी अपने बलबूते पर इकरार कर रहे हो कि मैं खुद ऐसा कवि हूं कि मैं अपनी जिंदगी में करके दिखाऊंगा कि सिवाय अल्लाह के किसी की इबादत नहीं करता, सिवाय अल्लाह के किसी से मदद नहीं मांगता। तो फौरन अल्लाह ताला ने ऐसे कहा कि नहीं, साथ में ये कहो, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम, अल्लाह सिरात मुस्तकीम जो है उसकी हिदायत तो आप ही फरमाएंगे, मेरे बस का नहीं है। तो जब कोई इकरार लिया तो साथ साथ दुआ सिखा दी। तो तौबा भी एक इकरार है कि मैं तौबा करता हूं। तौबा करने के माना यह कि आइंदा इस गुनाह का इर्तिकाब नहीं करूंगा। तो उसके साथ तौबा मांग लो। कि आप उसके साथ दुआ मांग लो कि या अल्लाह ये मैंने कर तो लिया, मगर अब आप इस इस्तकामत तो आप ही अता फरमाएंगे, मेरे बस का काम नहीं। तो दो चीजें हो जाएं, तौबा और उसके साथ दुआ। तो इंशाल्लाह सुम्मा इंशाल्लाह उस वक्त तो तुम पाक हो गए, जिस वक्त तुमने ये तौबा इस तरह कर ली और अल्लाह से मांग लिया, उस वक्त क्या हो गए? पाक हो गए। और कैसे पाक हो गए? अत्ताइबु मिनज़्ज़म्बि कमल्ला ज़म्बला, कि गुनाह से तौबा करने वाला ऐसा है जैसे कि उसने कभी गुनाह किया ही नहीं था। रहमत देखो उस पाक परवरदिगार की कि तुम्हें बिल्कुल सादा वरक बना दिया, तुम्हारा नाम है आमाल में जितने गुनाह लिखे थे सारे मिट गए, सब मिट गए, नाम है अमाल से खत्म हो गए। यानी आखिरत में जब जाओगे तो ये नहीं होगा कि डेबिट क्रेडिट होता रहे उसमें कि भाई इतने नेकियां की थी और इतने गुनाह किए थे और इतने गुनाह जो है माफ हो गए, लिहाजा वो नहीं, वो आएगा ही नहीं नाम है अमाल में, खत्म। तो ये ऐसा अल्लाह ताला ने नुस्खा अता फरमा दिया हर बंदे को, जिस हाल में हो, जो गलती हो जाए, जो गुनाह हो जाए, यहां तक के शिर्क तक भी कभी इर्तकाब हो जाए, माफ कर, तौबा कर ले, माफ है। अगर कोई मुशरिक है, शिर्क करता था और तौबा सच्ची कर ले, ईमान ले आए, सब पिछला जो हिसाब था बेबाक हो गया दुनिया में। ऐसी चीज है तौबा, अल्लाह ताला हम सबको तौफीक अता फरमाए। अब होता यह है कि बसा औकात आदमी ने यह सब कर लिया, गलती हो गई, बारी ताला की तरफ रुजू कर लिया, तौबा कर ली और दुआ भी मांग ली कि अल्लाह मुझे आइंदा इससे बचाइएगा, इस गुनाह से। लेकिन नफ्स और शैतान तो साथ लगा हुआ है, तौबा करने से ना नफ्स मरता है ना शैतान मरता है, वो तो है मौजूद। तो शुरू में जरा इरादा भी होगा, कोशिश भी होगी, सब कुछ होगा, पिछले पर नदामत भी होगी, कुछ दिन ठीक ठाक रहेगा, फिर आके कचोका लगाएगा शैतान और इंसान का नफ्स दोबारा हो गया, अलैहिज़ु बिल्लाह दोबारा गुनाह हो गया। अब इंसान जो है परेशान कि या अल्लाह मैंने तो तौबा भी की थी, आपसे मांगा भी था और उसके बावजूद मैं फिसल गया, एक मरतबा फिसल गया, दो मरतबा फिसल गया, तीन मरतबा फिसल गया, तो शैतान दूसरे रास्ते से राह मारता है। शैतान यह कहता है कि तू तो मर्दूद है, तू मर्दूद है, तेरी कहीं नजात नहीं है, क्योंकि तूने सारे तकाजे पूरे कर लिए, तौबा तूने कर ली, दुआ तूने मांग ली, इरादा तूने कर लिया, लेकिन फिर भी बहक जाता है, और एक बार नहीं दो बार तीन बार चार बार बहक रहा है। तो तू तो मर्दूद है शैतान की तरह, मायूस हो जा, अब तेरी कहीं नजात नहीं है, मायूस कर देता है। जब मायूस हो गया अलहदु बिल्लाह, तो इसके फिर शैतान दूसरी तरफ आता है, जब तू जाना ही तुझे जानना में, तो जो जी चाहे कर, यहां पर परवाह ही ना कर, क्या हो रहा है क्या नहीं, हलाल हो रहा है या हराम हो रहा है, जायज हो रहा है नाजायज हो रहा है। तो मायूस करके फिर दोबारा इंसान को गफलत की तरफ ले जाता है। लेकिन अल्लाह तबारक व तआला ने उसका भी हल बता दिया। वो एक मायूस ना होना है, ला तकनतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस ना हो। अगर शैतान और नफ्स तुम्हें बार बार वही हरकत करा रहा है और तुम उसके आगे ढेर हो गए हो, तो जिस तरह वो बार बार कर रहा है तुम भी बार बार करो। जिस तरह वो तुम्हें बार बार बहका रहा है उसी तरह तुम भी तौबा बार बार करो। तुम भी बार बार करो, वही नुस्खा दोबारा आजमाओ, बार बार आजमाओ। जब बार बार आजमाओगे और आजमाते रहोगे, एक वक्त आएगा कि शैतान को शिकस्त हो जाएगी। देखो अल्लाह ताला ने एक लफ्ज इस्तेमाल फरमाया है, तवाब। इन्नल्लाह हुवत तवाबुर रहीम। तवाब जो है ये अरबी जबान के लिहाज से मुबालगे का सीगा है, जिसका उर्दू तर्जमा होगा बहुत तौबा कबूल करने वाला, बहुत तौबा कबूल करने वाला। यानी सिर्फ तौबा कबूल करने वाला नहीं कहा, बल्कि बहुत तौबा कबूल करने वाला। तो अब बहुत तौबा कबूल करने के एक माना ये हो सकता है कि बहुत सारे गुनाह आदमियों की तौबा कबूल करता है। जितने आदमी है सबकी तौबा कबूल करता है अगर तौबा करे तो, इस लिहाज से वो बहुत तौबा कबूल करने वाला है। और एक माना यह है कि बार बार तौबा कबूल करता है, बार बार तौबा कबूल करता है। और यहां तो कहा अपने बारे में कि इन्नल्लाहु तवाबुर रहीम, बहुत तौबा कबूल करने वाला है, रहम करने वाला है। और बंदों के बारे में क्या फरमाया, इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीन व युहिब्बुल मुततहिरीन। अल्लाह ताला बहुत तौबा करने वालों को पसंद करता है और बहुत पाकी हासिल करने वालों को पसंद। तो बंदे के लिए भी तवाब का इस्तेमाल किया, बंदे के लिए भी। बंदे के लिए तवाब के एक ही माना है, जो बंदा है तवाब है। अगर उसके वहां तो दो माना हो सकते थे ना, लेकिन यहां एक ही माना है कि वो बार बार तौबा करने वाला, बार बार तौबा करने वाला। क्या मतलब है? कि एक बार तौबा की, शैतान ने टुड़वा दी तो फिर तौबा करता है, फिर टुड़वा दी फिर तौबा करता है, फिर टुड़वा दी फिर तौबा करता है। तो जो बंदे बार बार तौबा करते रहते हैं उनको अल्लाह पसंद करता है, उनसे अल्लाह ताला मोहब्बत करता है। इन्नल्लाह युहिब्बुत तवाबीना युहिब्बुल मुततहिरीन। तो अपने आप को भी तवाब फरमाया, तौबा कबूल करने वाला, और बंदों को भी तवाब फरमाया, यानी बहुत तौबा करने वाले, बहुत तौबा करने वाले। भाई एक मरतबा तौबा कर ली, दिल लगा के, गिड़गिड़ा के, अल्लाह ताला के सामने रो के तौबा कर ली। अब ये बहुत तौबा करने के क्या मतलब, यह कह रहा आइंदा भी अगर कोई गलती होगी फिर जाएगा तौबे के लिए, फिर होगी फिर जाएगा, फिर जो होगी फिर जाएगा। तो इसको अल्लाह ने तौबा को ऐसा बना दिया कि हर गुनाह हर गलती का इससे अल्लाह ताला तोड़ पैदा कर देते हैं बंदे को। आदम अलैहि सलाम को दुनिया में भेजने से पहले यह हथियार दे दिया था। तो आज अगर बंदा, यानी इससे ज्यादा आसानी और क्या होगी कि इंसान से गलती हो जाए तो वो फौरन तौबा की तरफ मुतवज्जे हो, अल्लाह ताला से तौबा मांगे। अगर उस वक्त वो पक्का इरादा कर ले, मांग भी ले अल्लाह ताला से, तो क्या होगा कि उस वक्त माफ हो गया, आइंदा अगर फिर हो फिर कर ले, फिर कर ले, मायूस मायूस ना हो, मायूसी के पास ना जाए, तो एक ना एक दिन इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंच जाएगा। जितने लोग गुनाहों के आदि होते हैं, किसी गुनाह के आदि हो गया बंदा, बास गुनाह ऐसे होते हैं जिनकी लत लग जाती है, अल्लाह बचाए, तो उसको छोड़ना मुश्किल होता है, लेकिन छोड़ने का यही रास्ता है कि अपनी तरफ से इरादा करे, आजम करे, माफी मांगे और छोड़ दे, फिर किसी वक्त उस आदत की तरफ बंदा फिर मुतवज्जे होता है, फिर तो फिर मांग ले, फिर तौबा कर ले, करता ही रहे, तौबा का दामन न छोड़े, तौबा का दामन न छोड़े तो इंशाल्लाह पहुंच जाएगा। एक अजीब कुरान करीम ने एक उसलूब इख्तियार फरमाया कि ग़ज़वे तबूक के मौके पर बाद साहबे किराम, उस वक्त जिहाद फर्ज हो गया था, फर्ज़ ऐन, तमाम साहबे किराम के ऊपर फर्ज़ ऐन था कि वो तबूक की जंग में शामिल होने के लिए नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ रवाना हों। बड़ा सख्त इम्तिहान था क्योंकि गर्मी का शदीद मौसम था, सुम्बुला की गर्मी, जिन लोगों ने हरमैन शरीफैन में देखी हो कभी, जो तकरीबन जुलाई के करीब आती है, आग बरसती आसमान से, वो मौसम था, और लंबा सफर, मदीना मुनव्वरा से तबूक का सफर तकरीबन 800-900 मील के करीब है, और वो सारा सफर ऊंटियों पर, ऊंटों पर तय करना, रास्ते में पानी नहीं मिलता था। मैंने वो देखा है, वो सहरा जो मदीना मुनव्वरा से तबूक जाता है, तो वहां पर कहीं दूर दूर तक कहीं कोई झाड़ी, कोई पत्ता, कोई दरख्त, कोई कुछ नजर नहीं आता, पानी उसमें नहीं, खजूरें पकने का मौसम है, सारी मदीना मुनव्वरा की मईशत का दारोमदार खजूरों पर था, खजूरें पक रही थी, वही मौसम होता था कि उसके जरिए फिर खजूरों की तिजारत होती थी, थोड़ा कड़ा इम्तिहान था। तो सहाबे किराम ने उस इम्तिहान में पूरे उतरे, लेकिन चंद सहाबे किराम थे जो सोचते रह गए, आज चले जाऊंगा, कल चला जाऊंगा, सुबह चला जाऊंगा, शाम चला जाऊंगा। तो नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ लाए तो उनके इस अमल की वजह से उनका बायकॉट किया, मुद्दत तक कोई उनसे खरीदो फरोख्त नहीं करता था, कोई बात नहीं करता था। खैर, वो जब गुजर गया वक्त और वो तौबा, उन्होंने सच्ची तौबा की, तो तौबा जब की तो कुरान ने ऐलान कर दिया, लकद ताब अल्लाह, अल्लाह ने तौबा कबूल कर ली उनकी, और उस तौबा को कबूल करने का कि जब खुशखबरी पहुंची एक सहाबी के पास, तो उन्होंने अपना सारा कुर्ता उतार के उसको खुशखबरी लाने वाले को दे दिया। अजीब नक्शा खींचा है उन्होंने खुद अपनी एक हदीस में कि क्या होता था मेरे साथ, कहते हैं मैं रसूल करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस में हाजिर होता था और आहादर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मुझ पर बराह रास्त निगाह नहीं डालते थे, लेकिन वक्फे वक्फे से जब मैं किसी और तरफ मुतवज्जे होता था तो करखियों से मुझे देख लेते थे। तो ऐसा वक्त गुजारा 50 दिन रात, उसके बाद तौबा कबूल होने का ऐलान आया, तौबा का कबूल होने का ऐलान आया तो खुशी की लहर दौड़ गई। ये सारा वाकया बयान करने के बाद आप बारी ताला फरमाते हैं, सुम्म ताबा अलैहिम लियतूबू, कि अल्लाह ने उनको तौबा कबूल कर ली ताकि वो आइंदा भी तौबा किया करें। सुम्मा ताब अलैहिम लियतूबू, अल्लाह ने उनके तौबा कबूल की ताकि वो अल्लाह ताला की तरफ रुजू होने का के आदि बन जाए, अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के आदि बन जाए। तौबा एक तरफ कबूल फरमा ली और आगे फरमा रहे हैं कि इसलिए कबूल की ताकि वो आदि बन जाए तौबा को, तौबा करने के और अल्लाह ताला की तरफ रुजू करने के। तो क्या बता रहे हैं अल्लाह तबारक व तआला, ये कि तौबा का कबूल करने के बाद भी तुम्हें तौबा की हाजत है, न जाने कहां ठोकर खा जाओगे, और इसलिए जब भी ठोकर खाओ आ जाओ मेरे पास, मेरी तरफ रुजू कर लो। यही शैतान के हमले का तोड़ है। तो ये असल में जब बंदा, बंदे की सही नजर सही नहीं होती तो उस वक्त वो शैतान उसको मायूसी की तरफ ले जाता है, परेशान कर देता है, परेशानी में इंसान मुब्तला हो जाता है। परेशानी तो बरहक है लेकिन मायूसी बरहक नहीं। लिहाजा उसका अल्लाह ताला ने यह इलाज बता दिया कि भाई अल्लाह भी तवाब तुम भी तवाब, समझे, अल्लाह भी तवाब और तुम भी तवाब, कि वो भी खूब तौबा कबूल करने वाला, तुम भी खूब तौबा करने वाले। तो ये तौबा का पहला मरहला होता है इस्तिग़फ़ार, समझे। तौबा तो बिल्कुल मुकम्मल है और इस्तिग़फ़ार उसका की पहली सीढ़ी है। तो इस्तिग़फ़ार बंदा करता रहे करता रहे करता रहे तो बिलाखिर तौबा के मकाम तक भी पहुंच जाएगा। कुरान करीम फरमाता है बल्लदीन फालू फाहशतन او ظلموا انفسهم فذكروا الله ومن يغفر فذكروا الله فاستغفروا الذنوب ومن يغفر الذنوب الا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلم। कैसे प्यार से बारी ताला फरमा रहे हैं, अच्छे अच्छे लोगों का जिक्र हो रहा है, नेक लोगों का, बुरों का नहीं हो रहा, नेक लोगों, नेक लोगों का जिक्र करते हुए फरमाते हैं कि ये वो लोग हैं जिनसे अगर कोई बेहयाई का काम हो गया या उन्होंने अपनी जान पर जुल्म कर लिया, हर गुनाह अपनी जान पर जुल्म है, अपनी जान पर जुल्म कर लिया तो अल्लाह को याद करते हैं और अपने गुनाहों का से इस्तगफार करते हैं, बीच में अल्लाह फरमाते हैं और गुनाहों को अल्लाह के जवाब मांगे, माफ करेगा भी कौन, मैं ये फिरुब इल्लाह, बीच में जुमले मुतरदा कि वो अपने गुनाहों की माफी मांगते हैं और माफी देगा भी कौन सिवाय मेरे, और अपने गुनाहों पर इसरार नहीं करते। इसरार करने के माना ये, अल्लाह बचाए, इसरार की दो सूरतें होती हैं। एक सूरत तो यह अल्लाह बचाए कि गुनाह को गुनाह ही ना समझे, कहते जी तो क्या खराबी है इसमें, यह बड़ी खतरनाक बात है कि गुनाह को गुनाह ही ना समझे, गुनाह होने से इनकार करे, तो यह तो इसरार की बहुत ही बदतरीन किस्म है। और एक यह कि गफलत में है, पता नहीं मैं कर रहा हूं तो कर रहा हूं, जो होना होगा हो जाएगा, यह इसरार है। लेकिन जो बंदा गफलत से अपने आप को निकाल चुका हो, जिसकी दलील यह है कि अगर कभी हो जाए तो फौरन इस्तगफार करे, दस मरतबा हो गया दस मरतबा करे, सौ मरतबा हो गया सौ मरतबा करे। इसीलिए हदीस में फरमाया मा असर मन इस्तगफर, मा असर मन इस्तगफर वैन आदा में अतमर्रा او كما قال صلى الله عليه وسلم, कि जो आदमी इस्तगफार करता रहे वो इसरार करने वालों में शामिल नहीं। यानी अगर फर्ज करो किसी गुनाह को छोड़ना फौरी तौर से मुमकिन नहीं हो रहा, तब भी इस्तगफार को ना छोड़े। एक आदमी की मुलाजमत ही नाजायज है, रोजी ही हलाल नहीं है, तो एक सूरत तो यह है कि भाई क्या करूं, मजबूरी है, लगा हुआ हूं इसमें, कभी दिल में नदामत भी नहीं होती। एक सूरत यह है कि नदामत भी हो रही है और इस कोशिश में भी है कि मुझे इससे नजात मिल जाए और हलाल रोजी मुझे मैसर आ जाए, तो और साथ इस्तगफार भी करता रहे। अगरचे मालूम है कि मैं छोड़ नहीं सकता भी फौरन, लेकिन इस्तगफार नहीं छोड़ता, तो अल्लाह ताला उस इस्तगफार की बरकत से इंशाल्लाह उसको निकाल भी देंगे उससे। तो मा असर मन इस्तगफर, जो शख्स इस्तगफार करता रहे वो इसरार करने वालों में शामिल नहीं। बलम युसिरु अला मा फअलू जो फरमाया था उसकी तफसीर फरमा दी नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। लिहाजा खुलासा ये निकलता है कि हमारी नजात का जो रास्ता है वो दो चीजें हैं, एक इस्तगफार एक तौबा। इस्तगफार पहली सीढ़ी और तौबा उसका उसकी तकमील। इन दो चीजों का दामन किसी वक्त नहीं छोड़ना। शैतान डसे या नफ्स बहकाए, हर सूरत में इस्तगफार और तौबा का दामन नहीं छोड़ना, और यही वो चीज है जो बिलाखिर इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचा देगी। तो बस ये करता रहे। हमारे हजरत बाबा नजम हसन साहब रहमतुल्लाह अलैह, हमारे हजरत डॉक्टर साहब के बड़े करीबी दोस्तों में से थे, और हजरत हकीम उल उम्मा कदर सलाह सिर्रऊ के मजाज थे, तो दरवेश आदमी थे, और लेकिन कोई एक जुमला कह देते थे किसी के दिल में उतर जाता था। तो कोई एक आदमी, एक नौजवान आ गया, किसी और काम से आया था, जब चलने लगा तो कहने लगा, जरा एक बेटा एक बात सुन लो, कि लोग समझते हैं दीन बहुत मुश्किल काम है। अरे कुछ भी मुश्किल नहीं है, रात को बैठ के तौबा कर लिया करो। रात को बैठ के तौबा कर लिया करो। इस जुमले से अल्लाह ताला ने उसकी जिंदगी बदल दी। तो भाई ये तवाब बन जाओ अल्लाह ताला के तवाब के सामने, बहुत तौबा, बहुत इस्तगफार, कसरत इस्तगफार। जब नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं दिन में 70 मरतबा इस्तगफार करता हूं, जिससे गुनाही सरजद नहीं होता, तो हम और तुम किस शुमार कतार में हैं। लिहाजा इस्तगफार को कहना चाहिए हुजूर कल्ब के साथ अपना वजीफा बनाए, और तौबा को रोजाना रात को इस्तगफार और तौबा करके सोए, अल्लाह ताला इंशाल्लाह मंजिल तक पहुंचा देंगे। اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. يا الله يا رحمن يا رحيم يا كريم اپنے فضل و کرم سے ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما دیں. یا اللہ ہمیں ان لوگوں میں شامل فرما لیے جن آپ کے دن کے بارے میں آپ نے فرمایا کہ ان اللہ یحب التوابین و یحب المتطہرین. یا اللہ صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ صدق دل سے توبہ کی توفیق عطا فرمائیے، توبہ کی تکمیل کی بھی توفیق عطا فرمائیے. یا اللہ ہمیں اپنے فضل و کرم سے خاص اپنی فضل و کرم کی ہدایت عطا فرما دیجیے. ہر طرح کے شر سے، فتنے سے، معصیتوں سے، منکرات سے ہماری، ہمارے گھر والوں، متعلقین، احباب سب کی حفاظت فرمائی. یا اللہ تمام حاضرین و حاضرات کو ان کے تمام جائز مقاصد میں کامیابی عطا فرمائیے، سب کی پریشانیوں کو دور فرمائیے. یا اللہ اس وقت فلسطین کے اندر آپ کے دین کے نام لیوا، یا اللہ آپ پر بھروسہ کر کے، یا اللہ بہت بڑی طاقت سے ٹکرا رہے ہیں، یا اللہ اپنے فضل و کرم سے، اپنے رحمت سے ان کی مدد فرمائیے، ان کی امداد و نصرت فرمائیے، ان کو فتح مبین عطا فرمائیے. ان کے دشمن کو یا اللہ ان کے اوپر اپنا عذاب نازل فرمائیے. یا اللہ ان پر اپنا عذاب نازل فرمائیے، یا اللہ یا رحمان یا رحیم یا کریم ان کو فتح مبین عطا فرما دیجئے، ہمارے مجاہدین کو جو وہاں پر جہاد کر رہے ہیں یا اللہ ان کو فتح مبین عطا فرما، یا اللہ وہ سال سال سے اسرائیل کے ظلم و ستم کا شکار ہیں، یا اللہ اپنی رحمت سے ان کی مظلومیت پر رحم فرما کر ان کو ان کے ظلم سے نجات عطا فرما دیجئے۔ وصلی اللہ تعالیٰ علی خیر خلق سیدنا مولانا محمد وعلی آلہ واصحابہ اجمعین، آمین برحمتک۔ www.dasquran.com